समाजीकरण के उद्देश्य। समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ उद्देश्य होते हैं, अर्थात बिना उद्देश्य के समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होती। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक जैविकीय प्राणी होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा वह जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया का पहला उद्देश्य एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करना है। समाजीकरण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसके दौरान अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। समाजीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहला, समाजीकरण का पहला उद्देश्य या स्वय या आत्म का विकास कहा जा सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता रहता। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह दूसरों के संपर्क में आता है और उसे पता चलता है कि वह क्या है, अर्थात दूसरे व्यक्ति से वह व्यवहार करना सीखता है तथा उसी के अनुरूप अपने स्वयं का विकास करता है। स्वयं के कारण ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जब व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के बारे में अपना निजी मत व्यक्त कर सके तो यह उसका स्वयं माना जाता है। अगर व्यक्ति के स्वयं का विकास न हो तो वह विभिन्न सत्यों में अंतर नहीं कर सकता। इस संबंध में H.M. जॉनसन ने सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन में कहा है कि स्वयं का विकास सामाजिक एवं सामाजिक पर्यावरणों के अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। समाजीकरण का दूसरा उद्देश्य दूसरे के कार्यों को अपनाना कहा जा सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा बच्चा दूसरे के कार्यों को अपनाता है। उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। वह अपने से बड़ों को कुछ करते देखता है तो उसे अपने खिलौनों के साथ बार बार दोहराता है। इस प्रकार बच्चा दूसरों की अच्छाई, बुराई, सुझाव, सहयोग एवं अन्य भावनाओं का अनुकरण करता है। इसे थोड़ा विस्तृत रूप से इस प्रकार समझाया जा सकता है कि बच्चा किन किन प्रक्रियाओं द्वारा दूसरे के व्यवहारों को अपनाता है। ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, क, अनुकरण। दूसरा, ख, सुझाव। तीसरा, ग, चौथा, पुरस्कार एवं दंड। अनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा जल्द से जल्द दूसरे के व्यवहारों को अपना लेता है। इसके कारण बच्चा अपने माता पिता तथा बड़ों के व्यवहारों को सीखता है। थोड़ा बड़ा होने पर वह भाषा सीखता है तथा इसके माध्यम से बड़ों के अन्य कार्यों का वह अनुकरण करता है। सुझाव के द्वारा भी बच्चा दूसरे के व्यवहारों को अपनाता है। वह समझता है कि जो हमें सुझाव दे रहे हैं वे अवश्य ही हमसे बुद्धिमान हैं। फलतः है। वह बड़े के सुझाव को मानकर दूसरे के व्यवहारों को अपनाता है। पुरस्कार एवं दंड के द्वारा भी बच्चा दूसरे के व्यवहारों को अपनाता है। जो बच्चे माता पिता की बात मानते हैं और उनके मनुकूल व्यवहार करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही तो माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के अनुरूप व्यवहार नहीं करते उन्हें दंड दिया जाता है। इस प्रकार बच्चे में यह भावना पैदा होती है कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अतः बच्चा केवल सामाजिक मर्यादा के अनुसार जो व्यवहार उचित होता है उसी को करता है। वह अपनी प्रथाओं, परंपराओं एवं आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है। इस प्रकार पुरस्कार एवं दंड के द्वारा दूसरे के व्यवहारों को वह अपनाता है। हालांकि इसमें दंड की अपेक्षा पुरस्कार का महत्व अधिक है। अगर दंड दिया जाए तो उसका स्वरूप कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी बच्चा समाज विरोधी हो जाता है तथा उसमें हीन भावना पनप जाती है। इस प्रकार यह पता चलता है कि पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से भी बच्चा दूसरे के व्यवहारों को अपनाता है। समाजीकरण का तीसरा उद्देश्य भाषा के महत्व को स्पष्ट करना है। भाषा का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के माध्यम से ही बच्चा समाज के संपर्क में आता है तथा कुछ कुछ सीखता है। भाषा एक ऐसा साधन है जिनके माध्यम से बच्चा अन्य साधनों की अपेक्षा जल्दी किसी बात को सीखता है। जब बच्चा किसी के कुछ कहने पर उसी बात को दोहराता है तो उसे ही भाषा कहा जाता है। यह भाषा ही है जिसके द्वारा बच्चा अपनी माँ या अपने बड़ों से जो कुछ कहना चाहता है वह कह देता है। किम्बाल यंग ने भी भाषा के महत्व को स्वीकार किया है। बच्चा भाषा सीखकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तथा सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा के महत्व को स्पष्ट करना समाजीकरण का एक उद्देश्य है। उपयुक्त विवरणों से समाजीकरण के विभिन्न उद्देश्यों का पता चलता है। वास्तव में समाजीकरण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।